भगवान के पुरुष और महिला सेवक रैंडोल्फ डन द्वारा अध्याय एक उपयाजक। इसी प्रकार उपयाजकों को सम्मान के योग्य, ईमानदार, अधिक शराब का सेवन न करने वाला और बेईमानी से लाभ प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए। उन्हें स्पष्ट विवेक के साथ आस्था की गहरी सच्चाइयों को पकड़कर रखना चाहिए। पहले उनका परीक्षण किया जाना चाहिए और फिर यदि उनके विरोध में कुछ न हो तो वे उपयाजकों का काम करें। उसी प्रकार उनकी पत्नियां भी आदर के योग्य हों, द्वेषपूर्ण बातें करने वाली न हों, परंतु संयमी और हर बात में विश्वासयोग्य हों। एक उपयाजक को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए और उसे अपने बच्चों और घर का अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए। जिन लोगों ने अच्छी तरह से सेवा की है वे मसीह यीशु में अपने विश्वास में एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा और महान आश्वासन प्राप्त करते हैं। एक तीमू 3:8-13 टिप्पणी। ए डॉट ग्रीक शब्द डायकोनस से डीकन्स जो लिंग तटस्थ है बनाम 8। बी महिलाएं ग्रीक शब्द गुनेकास से बनी हैं जिसका अर्थ है किसी भी उम्र की महिला, चाहे वह कुंवारी हो या विवाहित या विधवा या पत्नी, स्ट्रॉन्ग के संदर्भ पर निर्भर करती है। बनाम 11। सी उनका शब्द अनुवादक द्वारा जोड़ा गया था क्योंकि यह ग्रीक पाठ में नहीं है। अंग्रेजी अनुवाद में देर जोड़ने से इसका अर्थ महिला नौकरों से बदलकर डायकोनस पुरुष नौकरों की पत्नियां हो गया। बनाम 11। डी एक उपयाजक को एक ही पत्नी का पति होना चाहिए बहुविवाह करने वालों और ऐसे पुरुषों को बाहर करता है जो तलाक के प्रमाण पत्र के बिना अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अभी भी छोड़ी गई पत्नी से विवाहित होते हैं। यहाँ डीकन ग्रीक शब्द डायकोनोस वाइन्स के नामवाचक एकवचन पुल्लिंग से बना है। बनाम 12। टिप्पणी। दुर्भाग्य से डीकन शब्द इंग्लैंड के चर्च में एक पद या कार्यालय का प्रतिनिधित्व करता था। यदि ग्रीक शब्द का अनुवाद नौकर के रूप में किया गया होता तो भ्रम कम होता। टिप्पणी। सभी ईसाई ईश्वर की सेवा के लिए पुजारी हैं। इस प्रकार सभी डायकोनोस नौकर पुरुष और महिला हैं जो उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिन्हें करने की आज्ञा भगवान ने आदम और हव्वा को दी थी, लेकिन शारीरिक के बजाय आध्यात्मिक, जैसे कि आज्ञा का पालन करना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे और आदम और हव्वा के लिए भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना। काम जैसे ही आपको अवसर दिखे अच्छा करो, बगीचे की देखभाल करो। प्रतिलिपि प्रस्तुत करना, सुसमाचार का बीज बो क्योंकि यह मुक्ति की शक्ति है, फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी को भर दो। चूंकि इन डायकोनोस में चरवाहों के समान चरित्र लक्षण और योग्यताएं हैं, इसलिए उनका काम निकटता से संबंधित होना चाहिए। मसीह के चर्च की तुलना हमारे भौतिक शरीर से की जाती है, इसमें भी कई कार्यशील अंग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। यदि ये चर्च शरीर के अंग काम नहीं करते हैं तो चर्च शरीर कमजोर स्थिति में है, यह सूख जाएगा और मर जाएगा। चरवाहों के समान चरित्र लक्षण वाले पुरुषों का कार्य निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए कोई भी समझ एक व्याख्या या राय है। निम्नलिखित को जो मैकिनी के एक पाठ से उद्धृत किया गया है। कुछ संदर्भ में डायकोनोस शब्द अतिरिक्त विशिष्ट अर्थ और महत्व लेता है जब यह अद्वितीय आध्यात्मिक योग्यता वाले सेवकों के समूह को संदर्भित करता है, जैसा कि 1 तिमोथी 3 में होता है जहां इसे डीकन के रूप में लिप्यंतरित किया गया था। एक तरह से यह एक सहायक अभ्यास था क्योंकि यह इस ओर ध्यान आकर्षित करता है कि कुछ ईसाइयों को एक विशेष सेवा करने के लिए चुना जाता है जो संभवतः निगरानी करने वाले चौकीदारों को उनके आध्यात्मिक कार्य में सहायता करती है। हालांकि इन विशेष योग्यताओं वाले ईसाइयों के काम के बारे में हमें एक निश्चित विश्वास है, हमें यह सोचने के लिए कभी भी इतना हठधर्मी नहीं होना चाहिए कि यह इस विषय पर अंतिम शब्द है। हमें मसीह के शरीर के बारे में बाइबल की कुछ सच्चाइयों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि कोई भी व्याख्या इन सच्चाइयों के अनुरूप हो। चूंकि उनके चरित्र और अनुभव की योग्यताएं पहले से ही सिद्ध हैं, इसलिए यह मान लेना उचित है कि वे चर्च की आध्यात्मिक जरूरतों, विशेषकर उन जरूरतों की देखभाल के आध्यात्मिक कार्यों में बड़ों की सहायता करते हैं जो अत्यावश्यक हैं। डीकन कनिष्ठ बुजुर्ग नहीं हैं, हालांकि उनका काम चरवाहों द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों के समान होगा और अनुभव इन लोगों के लिए अच्छा प्रशिक्षण हो सकता है ताकि एक दिन वे अभिभावक, चौकीदार या प्रहरी के कार्य की इच्छा या आकांक्षा कर सकें। मसीह का शरीर एक जीवित, बढ़ता हुआ और संघर्षशील साम्राज्य है। एक जीवित जीव इसकी कई गतिशील जरूरतें हैं जो लगातार बदलती रहती हैं। समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आवश्यकताएं सामने आती हैं, आपातकालीन स्थितियां आती हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई अपनी नौकरी खो देता है, परिवारों में झगड़े होते हैं, माता पिता को बच्चों के साथ समस्याएं होती हैं, लोग मर जाते हैं और परिवारों को सांत्वना दी जानी चाहिए, महत्वपूर्ण मंत्रालयों को विकसित करने की आवश्यकता है। किसी चर्च में सभी जरूरतें गतिशील नहीं होती हैं, लेकिन कई होती हैं और कभी कभी वे अप्रत्याशित या आपातकालीन भी होती हैं। जब ये जरूरतें सामने आती हैं तो उन्हें पूरा किया जाना चाहिए और अभी भी पूरा किया जाना चाहिए। चर्च की इन जरूरतों को कौन पूरा करेगा? कौन सेवा करेगा? चर्च के सेवक कौन हैं? विचार करें कि पहली शताब्दी के दौरान जब भी कोई ईसाई इकट्ठा होने में असफल होता था तो सभी चिंतित हो जाते थे। क्या रोमन अधिकारियों ने उसे उसके विश्वास के कारण गिरफ्तार कर लिया? क्या यहूदियों के एक संप्रदाय ने उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया? यदि ऐसा है तो ईसाई परिवार या उनके चौकीदारों के लिए यह उचित होता कि वे पास में रहने वाले एक भाई से जाकर उसकी कुशलक्षेम जांच करने और किसी भी छूटी हुई जरूरत को पूरा करने के लिए कहें। सभी ईसाई नौकर हैं, सभी को सेवा के लिए बुलाया जाता है। चर्च किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सेवा करने के लिए किसी को भी बुला सकता है। यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, वित्त के क्षेत्र में चर्च को लेखांकन के अच्छे ज्ञान वाले किसी व्यक्ति को चुनना चाहिए जो भरोसेमंद हो और उस काम को करने के लिए आवश्यक निष्ठा और ईमानदारी रखता हो। लेकिन क्या चर्च का कोषाध्यक्ष बनने के लिए उस व्यक्ति का शादीशुदा होना और उसके बच्चे होना वाकई जरूरी है? क्या उस व्यक्ति के पास ये आध्यात्मिक योग्यताएं हैं? कोई भी ईसाई विशेष योग्यताओं से स्वतंत्र होकर किसी क्षेत्र में सेवा कर सकता है और उसे सेवा करनी चाहिए। उसे बस उस विशेष कार्य को करने के लिए योग्य होना चाहिए। लेकिन सभी ईसाइयों, पुरुष या महिला, को किसी न किसी क्षेत्र में सेवा करनी चाहिए और कर सकते हैं। अब जब गतिशील आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, यानी जब आपात स्थिति आती है, तो आम तौर पर प्रतिभाओं पर शोध करने और भाइयों के चरित्र की जांच करने के लिए न तो समय होता है और न ही अवसर होता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस समय उस विशेष आवश्यकता को कौन पूरा कर सकता है। चर्च को पहले से ही आध्यात्मिक रूप से योग्य सेवकों के एक समूह की आवश्यकता है। सिद्ध और पहचाने गए लोग अप्रत्याशित परिस्थितियों में चरवाहों, बुजुर्गों, चौकीदारों की सहायता के लिए बुलाए जाने के लिए उपलब्ध हैं, जहां आवश्यकता आपातकालीन प्रकृति की है और इसे तुरंत संभाला जाना चाहिए। जो मैककिनी का अंतिम उद्धरण। ऊपर दी गई डायकोनोसस योग्यताओं में एक पत्नी का पति होना और अपने बच्चों और घर को अच्छी तरह से प्रबंधित करना सभी डायकोनोसस पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सभी ईसाई पुरुष और महिलाएं डायकोनोसस सेवक हैं। इसलिए इन योग्यताओं वाले पुरुषों का कार्य अन्य पुरुष या महिला डायकोनोसस से अलग होना चाहिए। कुछ लोगों का अनुमान है कि ग्रीसियन विधवाओं की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए एक्ट्स में जेरूसलम चर्च द्वारा चुने गए 7 लोग डीकन थे, लेकिन उन्हें डायकोनोस के रूप में संदर्भित नहीं किया गया है, न ही उनकी योग्यताएं दी गई हैं और न ही यह ज्ञात है कि क्या सभी सातों ने एक तीमुथियुस में चरित्र लक्षणों को पूरा किया था। आज कई लोग बड़ों के काम को आध्यात्मिक मामलों में पुरुषों के रूप में मानते हैं, जबकि डीकन शारीरिक मामलों में पुरुषों के रूप में कार्य करते हैं। यह एक गलत समझ प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसा करने से शरीर के अन्य सभी सदस्यों, पुरुष या महिला, का काम पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता है। वास्तव में यदि बुजुर्ग आध्यात्मिक कार्य करते हैं और डीकन शारीरिक कार्य करते हैं तो गैरडीकन सेवकों के लिए कोई काम नहीं बचता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पत्रस ने फैलाव के निर्वासितों को एक पत्रस 4:10 में लिखा है, जैसा कि प्रत्येक को एक उपहार मिला है, इसे भगवान की विविध कृपा के अच्छे प्रबंधकों के रूप में एक दूसरे की सेवा करने के लिए उपयोग करें। प्रत्येक शब्द में विशेष योग्यता वाले और बिना योग्यता वाले पुरुष या महिलाएं शामिल हैं। यदि प्रत्येक में महिलाएं शामिल नहीं हैं, तो रोमियो 16:01 में यह कहकर पॉल गलती में था कि फेबे एक डायकोनोन, एक नौकर था। समकालीन अवधारणा की डीकन मंडली की भौतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, जैसे कि भवन और मैदान का रखरखाव नए नियम के अभ्यास से नहीं लिया गया है, क्योंकि नए नियम में ईसाइयों की किसी भी सभा के पास भौतिक सुविधाओं का स्वामित्व या रखरखाव करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उत्पीड़न की अवधि के दौरान चर्च की जरूरतें लोगों की जरूरतें थीं, न कि संपत्ति या चीजें। यह आज भी सच है, क्योंकि चर्च लोग हैं, संपत्ति नहीं। पुरुषों का उल्लेख नाम से किया गया है। बरनबास, जिसका अर्थ है प्रोत्साहन का पुत्र, एक लेवी जो साइप्रस का मूल निवासी था, ने अपना एक खेत बेच दिया और पैसे लाकर प्रेरितों के चरणों में रख दिए। प्रेरितों 4:36-37। तब बरनबास शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को गया, और जब वह मिल गया तो उसे अंताकिया में ले आया। पूरे एक वर्ष तक वे चर्च से मिलते रहे और बहुत से लोगों को शिक्षा दी। प्रेरितों 11:25-26। अब अंताकिया की कलीसिया में भविष्यवक्ता और शिक्षक थे बरनबास, शिमोन जो नाइजर कहलाता था, कुरेनी का लुसियुस, चतुष्कोणीय हेरोदेस के दरबार का सदस्य मानान और शाऊल। जब वे यहोवा की आराधना कर रहे थे और उपवास कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए जिसके लिए मैंने बुलाया है, मेरे लिए अलग कर दो। फिर उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रेरितों 13:1-3। कुछ समय बाद पॉल शाऊल ने बरनबास से कहा, आओ हम वापस जाएं और उन सभी नगरों में भाइयों से मिलें जहां हमने प्रभु के वचन का प्रचार किया था, और देखें कि वे क्या कर रहे हैं। बरनबास यूहन्ना को, जो मरकुस भी कहलाता है, अपने साथ ले जाना चाहता था, परंतु पौलुस ने उसे ले जाना बुद्धिमानी न समझी, क्योंकि उसने उन्हें पंफुलिया में छोड़ दिया था और उनके साथ काम नहीं किया। उनमें इतनी तीव्र असहमति थी कि वे अलग हो गए। बरनबास ने मरकुस को लिया और साइप्रस के लिए रवाना हो गया। प्रेरितों 15:36-40। मेरा साथी कैदी अरिस्तर्खुस और बरनबास का चचेरा भाई मरकुस तुम्हें नमस्कार भेजता है। कुलू 4:10। इपफ्रास, मसीह यीशु में मेरा साथी कैदी, तुम्हें नमस्कार भेजता है। और मेरे सहकर्मी मरकुस, अरिस्टार्खुस, देमास और लूका भी ऐसा ही करते हैं। फिलेमोन 23:24। देमास के लिए शीघ्र मेरे पास आने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि उसने इस संसार से प्रेम किया है और मुझे त्याग कर थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसेंस गैलाटिया चला गया है और टाइटस डेलमेटिया चला गया है। केवल ल्यूक मेरे साथ है। मरकुस को पकड़ो और उसे अपने साथ ले आओ, क्योंकि वह मेरी सेवा में मेरी सहायता करता है। 2 तीमो 4:9-12। हम डर्बे और फिर लुस्त्रा आए, जहां तीमुथियुस नाम का एक शिष्य रहता था, जिसकी माँ एक यहूदी और आस्तिक थी, लेकिन जिसका पिता यूनानी था। लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों ने उसकी प्रशंसा की। प्रेरितों 16:1-3। जब सीलास और तीमुथियुस मैसेडोनिया से आए तो पॉल ने खुद को विशेष रूप से प्रचार करने के लिए समर्पित कर दिया, यहूदियों को गवाही दी कि यीशु ही मसीह थे। प्रेरितों 18:05। उसने अपने दो सहायकों तीमुथियुस और इरास्तुस को मैसेडोनिया भेजा, जबकि वह कुछ समय तक एशिया प्रांत में रहा। प्रेरितों 19:22। इसलिए मैं तुमसे मेरा अनुकरण करने का आग्रह करता हूँ। इस कारण मैं अपने पुत्र तीमुथियुस को, जिससे मैं प्रेम रखता हूँ और प्रभु में विश्वासयोग्य है, तेरे पास भेजता हूँ। वह आपको मसीह यीशु में मेरे जीवन के तरीके की याद दिलाएगा, जो कि मैं हर चर्च में हर जगह जो सिखाता हूँ उससे सहमत है। 1 कोर 4:16-17। मैं प्रभु यीशु से आशा करता हूँ कि वह तीमुथियुस को शीघ्र तुम्हारे पास भेजेगा, कि जब मैं तुम्हारे विषय में समाचार पाऊँ तब मैं भी प्रसन्न हूँ। मेरे पास उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है जो आपके कल्याण में सच्ची रुचि लेता हो, क्योंकि हर कोई अपने ही हित की चिंता करता है, यीशु मसीह के हित की नहीं। परंतु तुम जानते हो कि तीमुथियुस ने अपने आप को सिद्ध किया है, क्योंकि उसने पिता के साथ पुत्र के समान सुसमाचार के काम में मेरे साथ सेवा की है। फिल 2:19-22। परंतु परमेश्वर, जो दीनों को शांति देता है, उसने तीतुस के आने से हमें शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उस शांति से भी जो तूने उसे दी थी। उसने हमें मेरे लिए आपकी लालसा, आपके गहरे दुःख, मेरे लिए आपकी प्रबल चिंता के बारे में बताया, जिससे मेरी खुशी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई। 2 कोर 7:6-7। जहाँ तक तीतुस का प्रश्न है, वह तुम्हारे बीच मेरा साथी और सहकर्मी है। जहाँ तक हमारे भाइयों की बात है, वे चर्चों के प्रतिनिधि हैं और मसीह का सम्मान हैं। 2 कोर 8:23। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी, उनमें से यूनानी यहूदियों ने हिब्रू यहूदियों के खिलाफ शिकायत की, क्योंकि भोजन के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की अनदेखी की जा रही थी। इसलिए बारहों ने सभी शिष्यों को एक साथ इकट्ठा किया और कहा, टेबलों पर इंतजार करने के लिए भगवान के वचन के मंत्रालय की उपेक्षा करना हमारे लिए सही नहीं होगा। हे भाइयों, अपने में से 7 पुरुष चुन लो जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण समझे जाएं। हम यह जिम्मेदारी उन्हें सौंप देंगे और अपना ध्यान प्रार्थना और वचन के मंत्रालय पर देंगे। इस प्रस्ताव से पूरा समूह प्रसन्न हुआ। उन्होंने स्तिफनुस को चुना, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। इसके अलावा अंताकिया से फिलिप, प्रोकोरस, निकानोर, टिमोन, परमेनस और निकोलस यहूदी धर्म में परिवर्तित हो गए। प्रेरितों 6:1-6। स्तिफनुस ने, जो परमेश्वर के अनुग्रह और शक्ति से परिपूर्ण मनुष्य था, लोगों के बीच बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाए। हालांकि फ्रीडमेन के सिनेगॉग, जैसा कि इसे कहा जाता था, के सदस्यों साइरेन और अलेक्जेंड्रिया के यहूदियों के साथ साथ सिलिसिया और एशिया के प्रांतों की ओर से विरोध उत्पन्न हुआ। ये लोग स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु वे उसकी बुद्धि या आत्मा जिसके द्वारा वह बोलता था के सामने खड़े न हो सके। प्रेरितों 6:8-10। परंतु शाऊल ने कलीसिया को नष्ट करना आरंभ कर दिया। घर घर जाकर उसने पुरुषों और महिलाओं को घसीट घसीट कर जेल में डाल दिया। जो लोग तितरबितर हो गए थे, वे जहां भी गए उन्होंने वचन का प्रचार किया। फिलिप्पुस सामरिया के एक नगर में गया और वहां मसीह का प्रचार किया। प्रेरितों 8:3-6। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक शिष्य था। हनन्याह घर में गया और उसमें प्रवेश किया। उसने शाऊल पर हाथ रखते हुए कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु, जिसने तुम्हें रास्ते में दर्शन दिया था जब तुम यहाँ आ रहे थे, उन्होंने मुझे भेजा है ताकि तुम फिर से देख सको और पवित्र आत्मा से भर जाओ। तुरंत शाऊल की आंखों से छिलके जैसी कोई चीज गिरी और वह फिर से देखने लगा। वह उठा और बपतिस्मा लिया, और कुछ खाने के बाद उसमें शक्ति आ गई। प्रेरितों 9:10-17-19। इसी समय कुछ भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से एक, जिसका नाम अग्बुस था, खड़ा हुआ और उसने आत्मा के माध्यम से भविष्यवाणी की कि पूरे रोमी संसार में भयंकर अकाल फैल जाएगा। प्रेरितों 11:27-28। फिलिप इंजिलवादी 7 में से 1। उनकी 4 अविवाहित बेटियां थीं जो भविष्यवाणी करती थीं। जब हम वहां कई दिन रहे, तब अग्बुस नाम का एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। हमारे पास आकर उसने पौलुस की पेटी ले ली और उससे अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा कहता है, इस रीति से यरूशलेम के यहूदी इस पेटी के स्वामी को बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। प्रेरितों 21:8-11। वे पॉल और बरनबास में इतनी तीखी असहमति थी कि वे अलग हो गए। बरनबास ने मरकुस को ले लिया और साइप्रस की ओर चल दिया, परंतु पौलुस ने सीलास को चुन लिया और भाइयों से प्रभु की कृपा पाकर चला गया। वह चर्चों को मजबूत करते हुए सीरिया और किलिकिया से होकर गुजरा। प्रेरितों 15:39-41। हमारे प्रिय मित्र और सहकर्मी फिलेमोन को, हमारी बहन अपफिया को, हमारे साथी सैनिक अर्खिप्पुस को और आपके घर में एकत्रित होने वाले चर्च को, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिले। मैंने प्रभु यीशु में आपके विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके प्रेम के बारे में सुना है। फिलेमोन 1:3-5। मैं आपसे अपील करता हूँ फिलेमोन, मेरे पुत्र उनेसिमुस के लिए, जो उस समय मेरा पुत्र बना जब मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पहले तो वह तुम्हारे लिए निकम्मा था, परंतु अब वह तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए उपयोगी हो गया है। फिलेमोन 10:11। मेरा साथी कैदी अरिस्तर्खुस और बरनबास का चचेरा भाई मरकुस तुम्हें नमस्कार भेजता है। कुल 4:10। इपफ्रास, जो तुम में से एक है और मसीह यीशु का सेवक है, नमस्कार भेजता है। वह सदैव तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहता है कि तुम परिपक्व और पूर्णतया आश्वस्त होकर परमेश्वर की सारी इच्छा पर दृढ़ बने रह सको। कर्नल 4:12-14। अध्याय 2। महिला नौकर डायकोनोस। क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। न कोई यहूदी है, न यूनानी, न कोई दास है, न स्वतंत्र, न कोई पुरुष, न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3:26-28। ईश्वर पक्षपाती नहीं है। प्रेरितों 10:34। सभी परमेश्वर की सेवा करने के लिए याजक हैं। प्रकाशित वाक्य 5:10। ग्रीक शब्द डायकोनोस लिंगतस्थ है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। डायकोनोस के लिए लैटिन शब्द मिनिस्टर है, जबकि अंग्रेजी शब्द सर्वेंट है। डायकोनोस या इसके प्रकार नए नियम में 28 बार पाए जाते हैं, जिनमें से एक में फेबे, एक महिला नौकर, डायकोनोन और फिलिप्पियों 1:1, 1 तीमुथियुस 3:8-13 और रोम 16:1 में 2 बार डीकन के रूप में उल्लेख किया गया है। अब आप मसीह का शरीर हैं और व्यक्तिगत रूप से इसके सदस्य हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया में पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर चमत्कार, फिर चंगाई के वरदान, सहायता, प्रशासन और विभिन्न प्रकार की भाषाएं नियुक्त की। 1 कोर 12:27-29। पॉल के माध्यम से भगवान ने चरवाहा कार्य के लिए चरित्र लक्षण निर्धारित किए। इन व्यक्तियों के चरित्र या योग्यताओं का अनुसरण करते हुए पॉल उन नौकरों के चरित्र, गुणों, योग्यताओं की चर्चा करते हैं जो स्पष्ट रूप से पर्यवेक्षकों, चौकीदारों, अभिभावकों, प्रहरी के इस महत्वपूर्ण कार्य में सहायता करते हैं। शरीर के अन्य सदस्यों के कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण, आवश्यक, अनिवार्य और अपरिहार्य हैं, चाहे वे पुरुष हों या महिला। महिलाओं की पहचान नाम से की गई। नए नियम में कई महिलाओं को नाम से पहचाना जाता है, जबकि सभी, प्रत्येक, हर जैसे समावेशी शब्दों में पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। भगवान के डायकोनोस की गतिविधियों की जांच करके यह निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए कि क्या ऐसे कोई कार्य हैं जो ईसाई महिलाओं को करने की आवश्यकता है या उन्हें करने से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन हनन्याह नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी सफीरा के साथ संपत्ति का एक टुकड़ा बेच दिया और अपनी पत्नी की जानकारी से उसने कुछ आय अपने पास रख ली। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी आई। उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था और पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची है? और उसने कहा, हाँ इतने के लिए। परंतु पतरस ने उससे कहा, तुम प्रभु के आत्मा को परखने के लिए एक मन कैसे हो गई हो? प्रेरितों 5:1-2, 7-9। टिप्पणी, सफिरा और अनन्या ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, जो एक जानबूझकर किया गया पाप है। याफा में तबीथा नाम की एक शिष्या थी, जिसका अनुवाद में दोरकास है। वह अच्छे कार्यों और परोपकार के कार्यों से भरपूर थी। प्रेरितों 9:36। टिप्पणी, तबीथा, दोरकास ने अच्छे और धर्मार्थ कार्य करके गरीबों की मदद की। विधानसभा के बाहर की गई एक गतिविधि। वह पीटर, जॉन की मां मरियम के घर गया, जिसका दूसरा नाम मार्क था, जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों 12:12। टिप्पणी, मैरी ने अपने घर का उपयोग संतों के एक साथ आने के लिए किया। इस मामले में सभा सभी ईसाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से थी, लेकिन विशेष रूप से पीटर के लिए, क्योंकि कुछ समय पहले हेरोदेस ने जेम्स का सिर काट दिया था और बपतिस्मा लेने के बाद उसने लिडिया हमसे आग्रह किया कि यदि आपने मुझे प्रभु के प्रति वफादार माना है तो मेरे घर आएं और रहें, और वह हम पर हावी हो गई। प्रेरितों 16:15। टिप्पणी, लिडिया ने अपनी संपत्ति का उपयोग पॉल और उसके साथ आए लोगों की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए किया, और उनमें से कुछ राजी हो गए और पॉल और सिलास में शामिल हो गए, जैसे कि बहुत से धर्मनिष्ठ यूनानी और कुछ प्रमुख महिलाएं नहीं। अब ये यहूदी पुरुष और महिलाएं थिस्सलुनीके के लोगों से अधिक महान थे। उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में जांच करते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं या नहीं। इसलिए उनमें से कई लोगों ने विश्वास किया, कुछ उच्च प्रतिष्ठा वाली यूनानी महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी। परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया। उनमें एरियोपैगाइट डायोनिसियस और दमरिस नाम एक स्त्री और उनके साथ अन्य लोग भी थे। प्रेरितों 17:04-11:34। टिप्पणी, दमारिस ने विश्वास किया। वह शायद एक प्रमुख एथेनियन महिला थी, क्योंकि जब पॉल बोल रहा था तब वह एरियोपगस में उपस्थित थी। इसके बाद पॉल एथेंस छोड़कर कोरिंथ चला गया और उसे अक्विला नाम का एक यहूदी मिला, जो पोंटस का मूल निवासी था और हाल ही में अपनी पत्नी प्रिसिला के साथ इटली से आया था। अब अपुल्लोस नाम का एक यहूदी, जो अलेक्जेंड्रिया का मूल निवासी था, इफिसुस में आया। वह एक वाक्पटु व्यक्ति था, शास्त्रों में निपुण था। उसे प्रभु के मार्ग का निर्देश दिया गया था और आत्मा में उत्साही होने के कारण वह यीशु से संबंधित बातें सटीकता से बोलता और सिखाता था, जैसा कि पुराने नियम में दर्ज है। हालांकि वह केवल जॉन के बपतिस्मा को जानता था, वह आराधनालय में निडरता से बोलने लगा। परंतु जब प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसे सुना तो वे उसे ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसे और भी ठीक से समझाया। प्रेरितों 18:1-24-26। टिप्पणी, उन्होंने अक्विला और उसकी पत्नी प्रिस्किल्ला ने अपुल्लोस को सिर्फ अक्विला ही नहीं सिखाया। दूसरे दिन हम प्रस्थान करके कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक या भीतर गए और उसके यहाँ ठहरे। उनकी 4 अविवाहित बेटियां थीं जो भविष्यवाणी करती थीं। प्रेरितों 21:8-9। टिप्पणी, फिलिप की बेटियों ने भविष्यवाणी की। एक कुरिन्थियों 14:21 से हम सीखते हैं कि भविष्यवाणियां विश्वासियों के लिए हैं। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उन्होंने केवल महिलाओं के लिए ही भविष्यवाणी की थी या केवल तब जब वे एकत्र नहीं हुए थे। मैं हमारी बहन फेबे, जो कि सेंखरिया के चर्च में एक सेवक है, की सराहना करता हूँ। रोमियो 16:01। टिप्पणी: कुछ बाइबल डायकोनोन को डीकोनेस के रूप में लिप्यंतरित करती हैं, लेकिन मसीह में प्रत्येक व्यक्ति, पुरुष या महिला, मसीह के शरीर में एक सेवक, डायकोनो और साथ ही भगवान की सेवा करने के लिए पुजारी है। फेबे ने किस प्रकार की सेवा प्रदान की, इसके बारे में बाइबल मौन है। हम केवल इतना जानते हैं कि उसने सेवा की थी। हम यह भी जानते हैं कि वह 1 तीमुथियुस 3:12 में उपयाजकों के रूप में अनुवादित पत्नी के साथ नौकरों के काम के लिए अद्वितीय योग्यताओं को पूरा नहीं करती थी। प्रिस्किल्ला और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण के लिए अपनी गर्दन जोखिम में डाल दी, जिन्हें न केवल मैं धन्यवाद देता हूँ परंतु अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी धन्यवाद देती हैं। उनके घर में कलीसिया को भी नमस्कार करो। मेरे प्रिय इपेनेतुस को नमस्कार, जो एशिया में ईसा मसीह में परिवर्तित होने वाला पहला व्यक्ति था। मैरी को नमस्कार, जिसने आपके लिए कड़ी मेहनत की है। एंड्रोनिकस और जूनिया, मेरे कुटुंबियों और मेरे साथी कैदियों को नमस्कार। रोमियो 16:3-7। टिप्पणी: हम नहीं जानते कि मैरी ने कौन सा कार्य किया। हालांकि हम जानते हैं कि वह आलसी नहीं थी, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की थी। एशिया के चर्च आपको शुभकामनाएं भेजते हैं। अक्विला और प्रिस्किला, अपने घर की कलीसिया के साथ आपको प्रभु में हार्दिक शुभकामनाएं भेजते हैं। 1 कुरिन्थियों 16:19। टिप्पणी: प्रिस्किला और अक्विला का घर ईसाइयों के एकत्र होने के लिए खुला था। मैं यूओदिया से प्रार्थना करता हूँ और मैं सिंतुखे से प्रार्थना करता हूँ कि वह प्रभु में सहमत हो जाए। हाँ, मैं आपसे भी विनती करता हूँ, सच्चे साथी, इन महिलाओं की मदद करें, जिन्होंने क्लेमेंट के साथ सुसमाचार में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। फिलिप्पियों 4:2-3। टिप्पणी: ये महिलाएं स्पष्टतः फिलिप्पी की थीं। उन्होंने पौलुस को सुसमाचार सिखाने में मदद की। उन्होंने किसी भी प्रकार की अनुचितता को दूर करने के लिए केवल उपस्थित रहने से कहीं अधिक प्रयास किया। पॉल और क्लेमेंट के साथ काम करते हुए उन्होंने सुसमाचार सिखाया। मुझे आपके सच्चे विश्वास की याद आती है, वह विश्वास जो पहले आपकी दादी लोइस और आपकी माँ यूनिस में था और अब, मुझे यकीन है, आप में भी निवास करता है। 2 तीमुथियुस 1:05। टिप्पणी: उन्होंने अपना विश्वास अपने परिवार को सौंप दिया। हमारे प्रिय साथी कार्यकर्ता फिलेमोन और हमारी बहन अफिया और हमारे साथी सैनिक अर्खिप्पुस और आपके घर की कलीसिया के नाम। फिलेमोन 1:2। टिप्पणी: एफिया एक ईसाई महिला जिसे पॉल और फिलेमोन जानते थे। समावेशी शब्दों द्वारा महिलाएं, सभी, प्रत्येक और हर कोई। अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन कोई 3,000 प्राणी और मिल गए। प्रेरितों 2:41। टिप्पणी: जिन्होंने उसका वचन प्राप्त किया में पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों को राहत भेजने का निश्चय किया। प्रेरितों 11:29। टिप्पणी: प्रत्येक में महिलाएं शामिल हैं, इसलिए महिलाओं ने निर्धारण में मदद की। तब प्रेरितों और पुर्नियों और सारी कलीसिया को अच्छा लगा कि अपने में से मनुष्यों को चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें। प्रेरितों 15:22। टिप्पणी: संपूर्ण चर्च में महिलाएं शामिल हैं, इसलिए महिलाओं ने चयन में भाग लिया। सो जब वे विदा हुए तो अंताकिया को गए और मंडली को इकट्ठा करके पत्री पहुंचाई। और जब उन्होंने इसे पढ़ा तो वे इसके प्रोत्साहन से आनंदित हुए। प्रेरितों 15:30-31। टिप्पणी: मंडली में वे महिलाएं भी शामिल थीं जिन्होंने सुना और आनंदित हुए। फिर उसने सूबेदार को आदेश दिया कि उसे हिरासत में रखा जाए लेकिन कुछ स्वतंत्रता दी जाए और उसके किसी भी दोस्त को उसकी जरूरतें पूरी करने से न रोका जाए। प्रेरितों 24:23। टिप्पणी: दोस्तों में वे पुरुष और महिलाएं शामिल थे जो पॉल की जरूरतों का ध्यान रखते थे। हर एक बुरे काम करने वाले मनुष्य को, पहले यहूदी को और यूनानी को भी, क्लेश और संकट मिलेगा, परंतु जो कोई भलाई करता है उसको महिमा और आदर और शांति मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता। रोमियो 2:9-11। टिप्पणी: प्रत्येक मनुष्य अच्छा या बुरा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम सब मसीह यीशु में परमेश्वर के पुत्र हो, क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। न कोई यहूदी है, न यूनानी, न कोई दास है, न स्वतंत्र, न कोई नरनारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों 3:26-29। टिप्पणी: एक बेटे को पिता की विरासत पर कानूनी अधिकार था, लेकिन आप में से जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया उनमें महिलाएं भी शामिल थीं। तब मसीह में महिलाओं को विरासत का अधिकार प्राप्त हुआ। फिर पॉल ने उल्लेख किया कि जो लोग मसीह में हैं वे एक हैं। मसीह में कोई भी दोयम दर्जे का ईसाई नहीं है, क्योंकि सभी ईश्वर की सेवा करने वाले सेवक और पुजारी हैं। 1 पत्रस 2:16 प्रकाशित वाक्य 1:06। वह जो बाबुल में है और जो इसी रीति से चुनी गई है तुम्हें नमस्कार भेजती है। 1 पत्रस 5:13। टिप्पणी: वह या तो एक ईसाई महिला हो सकती है या ईसाइयों की एक सभा, पता नहीं। चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के लिए बुजुर्ग, जिनसे मैं सच में प्यार करता हूँ, और न केवल मैं बल्कि उन सभी से भी जो सच्चाई जानते हैं। 2 यूहन्ना 1:01। टिप्पणी: निर्वाचित महिला या तो एक ईसाई महिला हो सकती है या ईसाइयों की एक सभा, पता नहीं। सभी शब्दों में प्रत्येक में महिलाएं भी शामिल हैं। इसलिए महिलाओं को मसीह के शरीर को एक संयुक्त शरीर के रूप में कार्य करने के लिए भाग लेना होगा, अन्यथा शरीर के हिस्से को शरीर पर खिंचाव या मृत माना जाता है। महिलाओं की गतिविधि और रवैया: तो चाहे आप पुरुष या महिला, खाओ या पियो या जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यहूदियों, यूनानियों या परमेश्वर की कलीसिया को ठेस न पहुंचाएं, जैसे मैं अपने हर काम से हर किसी को खुश करने की कोशिश करता हूं, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि बहुतों के फायदे के लिए, ताकि वे बच जाएं। मेरा अनुकरण करो जैसा मैं मसीह का हूं। अब मैं तुम्हारी सराहना करता हूं, क्योंकि तुम मुझे हर बात में याद रखते हो और उन परंपराओं को भी बनाए रखते हो जिन्हें मैंने तुम्हें सौंप दिया है। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि हर एक मनुष्य का सिर मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसीह का सिर परमेश्वर है। प्रत्येक मनुष्य जो अपना सिर ढांककर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है अपने सिर मसीह का अनादर करता है। परंतु जो स्त्री अपना सिर उघाड़े हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है उसकी मनाही नहीं है, वह अपने सिर का अनादर करती है, क्योंकि यह एक और एक ही बात है, मानो वह मुंडी हुई हो। यदि औरत पर्दा नहीं करती उसका भी बाल कतरा जाए, परंतु यदि बाल कतरना या मुंडाना स्त्री के लिए लज्जा की बात हो तो पर्दा किया जाए। 1 कुरिन्थियों 10:31-11:06। टिप्पणी: हमेशा दूसरे व्यक्ति की भलाई की तलाश करें। 10:24। तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा करो। 10:31। हे स्त्री पुरुष अपने सिर का अपमान न करें। 11:04। आर्थिक रूप से गरीब ईसाइयों को हीन न समझें, 11:21। अपने आध्यात्मिक उपहार को अधिक महत्वपूर्ण न समझें, 12। प्यार सबसे महत्वपूर्ण है, यह हमेशा के लिए रहता है, 12:31-13:13। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, आदर करें, आदर करें और विशेषकर उन लोगों को। अपनी भलाई की जिम्मेदारी लेते हुए भ्रम से बचें, 14। टिप्पणी, यहूदियों या यूनानियों को नाराज न करें का अर्थ है कि किसी ईसाई भाई या बहन के रीति रिवाजों और परंपराओं की अनदेखी करके उनका विश्वास खोने का कारण न बने। टिप्पणी, परंपरा, ग्रीक शब्द पैराडोसिस से आया है जिसका अर्थ है शिक्षण का सार। थायर का टिप्पणी, ग्रीक शब्द प्रोफिटियो से भविष्यवाणी का अर्थ है भगवान के राज्य से संबंधित भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना या ऐसी बात बताना, घोषित करना, जिसे केवल दिव्य रहस्योद्घाटन द्वारा ही जाना जा सकता है। थायर का टिप्पणी, ग्रीक शब्द एंड्रॉस से एवरी मैन का अर्थ संपर्कों के आधार पर या तो पुरुष या पति है। टिप्पणी, हर महिला, ग्रीक शब्द गुनाइकोस से आया है जिसका अर्थ है महिला या पत्नी। टिप्पणी, कटे हुए या मुंडा, जिन महिलाओं के बाल कटे हुए थे वे वेश्यावृत्ति या व्यभिचार की सजा का संकेत देते थे। एडम क्लार्क टिप्पणी, पॉल कुरिंथियों को याद दिला रहा है कि प्रार्थना या भविष्यवाणी करते समय आदर और आदर संभवतः प्रथा से अधिक महत्वपूर्ण है। उस समय की प्रथा थी कि पुरुषों को किसी वरिष्ठ की उपस्थिति में अपना सिर ढकना चाहिए था और महिलाओं को सिर ढके बिना सार्वजनिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए था। तो क्या सिर ढकना धार्मिकता का कार्य था या आदर और सम्मान की प्रथा थी? एक पति अपनी पत्नी का सिर न ढकने के ऐसे अनादर के लिए उसे तलाक दे सकता है। पॉल की निंदा एक ऐसे व्यक्ति द्वारा ईश्वर का अनादर करना प्रतीत होती है जो अपना सिर ढकना नहीं हटाता है, और एक महिला द्वारा अपने सिर को घूंघट से नहीं ढककर उसकी भलाई, पति, पिता या सबसे बड़े भाई के लिए जिम्मेदार पुरुष का अपमान करना प्रतीत होता है। दोनों अपने समाज में सम्मान की परंपरा और रीति रिवाज का उल्लंघन करते हैं या कानूनी अधिकार संभवतः बुतपरस्त प्रथाओं की स्वीकृति का संकेत देते हैं। यह पुरुषों या महिलाओं को प्रार्थना करने या भविष्यवाणी करने से नहीं रोकता है, लेकिन मसीह में किसी की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का परिणाम कभी भी दूसरों का अनादर नहीं होना चाहिए। स्वर्गदूतों के कारण एक पत्नी को दायित्व के तहत अपने सिर पर अधिकार, शक्ति का प्रतीक रखना चाहिए। फिर भी प्रभु में स्त्री पुरुष से स्वतंत्र नहीं है और न ही पुरुष स्त्री से, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से बनी वैसे ही पुरुष अब स्त्री से उत्पन्न हुआ, और सभी चीजें परमेश्वर की ओर से हैं। आप स्वयं निर्णय करें, क्या एक पत्नी के लिए बिना सिर ढके ईश्वर से प्रार्थना करना उचित है? क्या प्रकृति तुम्हें यह नहीं सिखाती कि यदि कोई पुरुष लंबे बाल रखे तो यह उसके लिए अपमान है, परंतु यदि कोई स्त्री लंबे बाल रखे तो यह उसकी शोभा है, क्योंकि उसके बाल उसे ओढ़ने के लिए दिए गए हैं? यदि कोई विवादास्पद होने के लिए इच्छुक है तो हमारे पास ऐसी कोई प्रथा नहीं है, न ही भगवान के चर्चों में। 1 कुरिन्थियों 11:10-16। टिप्पणी, जो स्त्री अपने पति, अपने मुखिया का अपमान करती है उसका आचरण उचित नहीं होता है। टिप्पणी, ईसा से पहले और बाद के समय में जब रोम ने दुनिया पर शासन किया था तब ज्यादातर महिलाओं को पुरुषों के अधिकार या शक्ति के अधीन माना जाता था। विवाहित महिलाओं के लिए उनके बालों को ढकने वाला घूंघट 1 उनकी वैवाहिक स्थिति को दर्शाता है, 2 मुखिया के रूप में पति की स्थिति के प्रति उनकी अधीनता, 3 विनम्रता और पवित्रता का संकेत, और 4 उन्हें पुरुषों की याचना से बचाता है। बिना घूंघट वाली महिलाओं को विद्रोही माना जाता था, अक्सर छोटे बाल कटे, कटे हुए या मुंडा सिर वाली वेश्याएं। एक संस्कृति में रीति रिवाज दूसरी संस्कृतियों में कानून के रूप में बाध्यकारी नहीं हैं। आज विश्व के कुछ क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए भारत में, महिलाएं अपनी वैवाहिक स्थिति के प्रतीक चिन्ह पहनती हैं। हिंदू विवाह संपन्न होने के बाद पत्नी को कभी भी अपनी बाहों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसे यह दर्शाने के लिए हमेशा चूड़ियां पहननी चाहिए कि वह शादीशुदा है। टिप्पणी: घूंघट ग्रीक पल्ला एक विवाहित महिला का प्रतीक था और उनकी संस्कृति में पति के अधिकार का प्रतीक था। टिप्पणी: जो लोग मसीह में स्वतंत्र नहीं हैं, वे श्रेष्ठ या निम्न नहीं बल्कि ईश्वर के मूल्य में समान और उनके राज्य में आवश्यक होने का सुझाव देते हैं। मसीह में समानता ईश्वर के निर्देश को नहीं बदलती है कि पुरुष पर परिवार इकाई की जिम्मेदारी है और सृजन के द्वारा महिला उसकी सहायक और साथी थी, न कि उसकी नौकरानी। वह जो भी कार्य करती है वह मसीह और उसके प्रेरितों की शिक्षाओं के विरुद्ध या स्थानीय रीति रिवाजों के विरुद्ध होता है। जैसे कि समुदाय उसके कार्यों को अनुचित मानता है, वह अपने पति का अपमान करती है और मसीह के उद्देश्य को बढ़ावा नहीं देती है। टिप्पणी: दैनिक गतिविधियों में आदर और सम्मान प्रदर्शित होना चाहिए, जो सभी रिश्तों में एकता को बढ़ावा देता है, चाहे वह परिवार, समुदाय, कार्यस्थल, सरकार या चर्च में हो या नहीं। मसीह में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, का ईश्वर के समक्ष समान आध्यात्मिक दर्जा है। फिर क्या, हे भाइयों, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के पास एक भजन, एक एक पाठ, एक रहस्य उद्घाटन, एक जीभ, दो या एक व्याख्या होती है। निर्माण के लिए सभी चीजें की जाएं। प्रोत्साहन: यदि कोई पुरुष या महिला एक भाषा में बोलता है तो केवल दो या अधिक से अधिक तीन होने दें और प्रत्येक बारी बारी से क्रम में और किसी पुरुष या महिला को व्याख्या करने दें। लेकिन अगर व्याख्या करने वाला कोई नहीं है तो उनमें से प्रत्येक पुरुष या महिला को चर्च मसीह के इकट्ठे शरीर में चुप रहना चाहिए और खुद से, लिंग विशिष्ट नहीं, और भगवान से बात करनी चाहिए। दो या तीन भविष्यवक्ताओं, लिंग विशिष्ट नहीं, को बोलने दें और अन्य, लिंग विशिष्ट नहीं, को जो कहा गया है उसका मूल्यांकन करने दें। यदि वहां बैठे किसी अन्य व्यक्ति को कोई रहस्योद्घाटन किया जाता है तो पहले को चुप रहने दें, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, जिससे सब सीखें और सब प्रोत्साहित हों, और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में रहती है। क्योंकि परमेश्वर भ्रम का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसा कि संतों की सभी मंडलियों या सभाओं में होता है, महिलाओं, आपकी महिला का अर्थ है पत्नी, केजेवी, एनकेजेवी, वाईएलटी को चर्चों, एक्लेसियाइस सभाओं में चुप रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है, लेकिन उन्हें बोलना चाहिए अधीन रहें, जैसा कि कानून भी कहता है। यदि उन्हें कुछ सीखने की इच्छा है तो उन्हें घर पर अपने पतियों, एंड्रास, कोई भी पुरुष, एक पुरुष से पूछना चाहिए, क्योंकि किसी महिला के लिए चर्च में बोलना शर्मनाक है। 1 कुरिन्थियों 14:26-36। टिप्पणी: कोरिंथ में ईसाइयों को मसीह के शरीर के रूप में एक साथ इकट्ठा किया गया था, जहां उन्होंने गाया, सिखाया, डिडाचेन, रहस्योद्घाटन दिया और दुभाषियों के माध्यम से अन्य भाषाओं में बात की। एक साथ इकट्ठा होने का उद्देश्य ईसाइयों को वफादार बने रहने और अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करना था। वक्ता, पुरुष या महिला, जिन्हें दुभाषिया मौजूद नहीं होने के कारण बात समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें चुप रहना था। एक ही समय में प्रार्थना करने, बोलने या गाने के कारण होने वाली अराजकता और भ्रम आगंतुकों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अपने दिमाग से बाहर हैं और भगवान के संदेश को सुनने से रोकेंगे। हर किसी को एक के बाद एक, एक के बाद एक बोलने या गाने की अनुमति देना ईश्वर और अपने साथी व्यक्ति के प्रति सम्मानजनक है। टिप्पणी: दो या तीन पैगंबर बोलते हैं। एक पैगंबर वह पुरुष या महिला होता है जिसके माध्यम से ईश्वर बोलता है। थायर के ग्रीक लेक्सिकन से। टिप्पणी: अभी भी व्यवस्था बनाए रखने के विषय पर पॉल ने कोरिंथियन महिलाओं को चुप रहने और अपने मूर्ख किसी के अपने पति को बाधित नहीं करने का निर्देश दिया, लेकिन इंतजार करें और घर आने पर उससे पूछें। पॉल के निर्देश उन ईसाई महिलाओं पर लागू नहीं होंगे जिनके पति मूर्ति पूजक थे, मर चुके थे या उन्हें छोड़ चुके थे। मुख्य बात यह है कि अपने पढ़ाने वाले पति का सम्मान करें और दूसरों पुरुषों, महिलाओं या आगंतुकों का सम्मान करें। तो कानून संभवतः आराधनालय के नियमों या परंपराओं को संदर्भित करता है। टिप्पणी: जब सभी ईसाइयों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है तो उन्हें दूसरों का सम्मान करते हुए व्यवस्थित तरीके से भाग लेना होता है, न कि सभी को एक ही समय में बोलना भ्रम और अराजकता पैदा करता है। महिलाओं को अपनी भलाई के लिए जिम्मेदार पुरुष, चाहे उनके पति, पिता या भाई हों, की टिप्पणियों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए या उन्हें चुनौती नहीं देनी चाहिए या विशेष रूप से किसी भी पुरुष के प्रति अपमानजनक रवैया नहीं दिखाना चाहिए। तो फिर परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रिय दयालु हृदय दयालुता, नम्रता, नम्रता और धैर्य के रूप में धारण करें। मसीह के वचन को आप में प्रचुरता से रहने दें। सभी ज्ञान में एक दूसरे को सिखाएं और चेतावनी दें, भजन और भजन गाएं और आध्यात्मिक गीत अपने हृदय में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ। कुलुस्सियों 3:12-16। टिप्पणी: चुने हुए लोगों में महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। दोनों बुद्धि और ज्ञान में शिक्षा देने और चेतावनी देने के लिए हैं। निर्देश इस बारे में चुप है कि यह निजी तौर पर किया जाना है या विधानसभा में। पाठ में कहा गया है कि शिक्षण और चेतावनी ईश्वर के हृदय में गीत के रूप में की जाती है, लेकिन एक दूसरे को सिखाने और चेतावनी देने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने दिल से बोले, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। कुछ टिप्पणियों की राय: अल्बर्ट बार्न्स नोट्स। उन्हें लोगों को पढ़ाना नहीं था, न ही उन्हें बोलने वालों को रोकना था। रोसिन मुल्लर। यह संभव है कि प्रेरित होने के बहाने महिलाओं ने सार्वजनिक शिक्षकों का पद ग्रहण किया हो। टिप्पणी: वे व्याख्यान देने, उपदेश देने की उपदेशात्मक शिक्षण पद्धति पर अड़े रहे। एडम क्लार्क। टिप्पणी: वहां एक यहूदी अध्यादेश था, इस कथन पर ध्यान दें, जैसा कि कानून भी कहता है, महिलाओं को सभाओं में पढ़ाने या यहां तक कि प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं थी। रब्बियों ने सिखाया कि एक महिला को अपने डिस्टाफ, कताई में इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण के उपयोग के अलावा कुछ नहीं पता होना चाहिए, और रब्बी एलिएजेर की बातें, जैसा कि दिया गया, बम्मीदबार रब्बा सेक 9:204। दोनों टिप्पणी और निष्पादन के योग्य हैं। वे ये हैं: कानून के शब्दों को जला दिया जाए, इसके बजाय कि उन्हें महिलाओं को सौंप दिया जाए। रॉय सी डेवर। 1 कुरिन्थियों 14:26-40 में बैठक आध्यात्मिक उपहारों का अभ्यास करने और लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से थी। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के अपने उपहार का प्रयोग कर रहे थे। पैगंबरों की पत्नियों को चर्चों में चुप रहने का निर्देश दिया गया था। उन्हें बोलने, अपनी चुप्पी तोड़ने की अनुमति नहीं थी। उन्हें अधीनता में रहना था। यदि वे कुछ भी सीखते हैं पति पैगंबर के माध्यम से आने वाले संदेश के संबंध में, तो उन्हें भविष्यवाणी में बाधा नहीं डालनी थी, बल्कि इंतजार करना था और घर पर अपने पतियों से पूछना था। उस बैठक में महिला पत्नी का बोलना शर्मनाक था। से आस्था के लिए संघर्ष, October 1, 1995, 3-2, गाई एन वुड्स, प्रश्न और उत्तर, ओपन फोरम, फ्रीड हार्डमैन कॉलेज, हेंडरसन, TN, 1976, PP 106-109। गाई एन वुड्स। अध्ययन के अंतर्गत अनुच्छेद 1 कुरिन्थियों 14:34-35 में चुप रहने के लिए अपेक्षित महिलाएं कौन थीं? वे पूर्वगामी अनुच्छेद पिछले छंदों पर उनकी टिप्पणियां में बताए गए पैगंबरों की पत्नियां थीं। रहस्योद्घाटन की प्रक्रिया के दौरान हस्तक्षेप करने या पूछताछ करने से मना किया गया। प्रेरित ने बहुत ही समझदार नियम निर्धारित किया कि उन्हें प्रश्न को आगे बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी जब तक वे घर पर अपने पतियों से पूछने में सक्षम नहीं हो गईं। ये स्त्रियां विवाहित थीं, उनके पति थे, उनके पति घर पर उनके सवालों का जवाब देने में सक्षम थे। कॉन्टेंडिंग फॉर द फेथ से अक्टूबर 1995, त्रिदस रॉय सी डेवर से महिलाओं की भूमिका, विलिंगटन टेक्सास, कॉपीराइट कोई तारीख नहीं, pp.13-15। अन्य दुनिया में रोमन गणराज्य के शुरुआती दिनों में महिलाओं को सुझाव देने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन साम्राज्य की शुरुआत तक कई पुरुष अपनी पत्नियों की सलाह मांग रहे थे और उसका पालन भी कर रहे थे। ऐसा करना बिल्कुल ठीक था, बशर्ते सलाह निजी तौर पर दी गई हो। एथेनियाई पुरुष महिलाओं को संपत्ति से ज्यादा बेहतर नहीं मानते थे, सत्ता सबसे मजबूत के पास है। अध्याय 3, नौकर सामान्य तौर पर शिक्षकों की। हालांकि इस समय तक आप पुरुष या महिला को शिक्षक होना चाहिए, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपको ईश्वर की वाणी के मूल सिद्धांतों को फिर से सिखाए। तुम्हें ठोस भोजन की नहीं दूध की आवश्यकता है, क्योंकि जो कोई दूध पर जीवित रहता है वह बालक है और धर्म के वचन में निपुण नहीं है। लेकिन ठोस भोजन परिपक्व लोगों के लिए है, जिनके पास अच्छे और बुरे में अंतर करने के लिए निरंतर अभ्यास द्वारा प्रशिक्षित विवेक की शक्ति है। इब्रानियों 5:12-14। नए नियम में आम विषय खोए हुए लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है। पहली सदी के प्रचारकों ने प्रेरितों के काम 8:04 के अनुसार खोए हुए लोगों को सुसमाचार सिखाने का कार्य किया। ईसाई पुरुष और महिलाएं जो यरूशलेम से तितर-बितर हो गए थे, जहां भी वे गए वचन का प्रचार किया। ये आयत 4 में वर्णित आगे बढ़ गए और त्रोआस में हमारी बाट जोह रहे थे, परंतु हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज खोलकर चले और 5 दिन के बाद त्रोआस में उनके पास पहुंचे और वहां 7 दिन तक ठहरे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन जाने का विचार करके उनसे बातें की और आधी रात तक अपनी बात कहता रहा। प्रेरितों 20:5-8। टिप्पणी, ग्रीक शब्द डायलेगोमाई का अनुवाद बातचीत केजेवी में उपदेश के रूप में गलत अनुवाद का अर्थ है बातचीत करना, प्रवचन करना, बहस करना या चर्चा करना। इसलिए पॉल ने पल्पिट उपदेश नहीं दिया बल्कि ईश्वर द्वारा मसीह की घोषणा से प्राप्त परिणामों पर चर्चा की। आज प्रचारक मुख्य रूप से अपनी पसंद के किसी बाइबल विषय की व्याख्या मसीह में मौजूद लोगों के सामने बिना किसी प्रश्न या चर्चा के प्रस्तुत करते हैं। हालांकि कुछ प्रचारक अपने विचारों को विचाराधीन अनुच्छेद पर निर्देशित करके सीधे बाइबल से पढ़ाते हैं। पहले से ही मसीह में मौजूद बचाए गए लोगों के लिए फिर से सुसमाचार, मसीह और उनकी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान की घोषणा करने का कोई उल्लेख नहीं है। ईश्वर सुसमाचार सिखाने और प्रचार करने के लिए अपने राज्य के ईसाइयों पर भरोसा करते हैं ताकि कोई भी नष्ट न हो और सभी जीवित बलिदान के रूप में वफादार बने रहें। मसीह के जीवित शरीर पुरुषों और महिलाओं का मिशन है। ए सारी दुनिया में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, मरकुस 16:15। बी सभी लोगों का भला करें, विशेषकर विश्वासियों का। गला 6:9-10। सी शरीर के सदस्यों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा देना, 1 कुरिन्थियों 14। डी भजन और भजन में एक दूसरे से बात करें, इफिसियों 5:19। ई अपने शरीरों को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को अर्पित करें, रोमियों 12:01। प्रचार का सबसे प्रभावी तरीका व्यक्तिगत आधार पर है। यह दुर्लभ होगा यदि रूपांतरण जनसंचार से होता है, जागरूकता पैदा करने और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्रोत प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि। यदि सुसमाचार को पूरी दुनिया में प्रचारित किया जाना है तो ईसाइयों की मंडलियों को गतिविधि से जुड़े अंग्रेजी नाम की परवाह किए बिना प्रचार पर अधिक जोर देना चाहिए, उदाहरण के लिए शिक्षक, मंत्री, मिशनरी, इंजीलवादी, उपदेशक, नौकर, पादरी, बुजुर्ग, चौकीदार या शिष्य, लेकिन बाइबल नामों का उपयोग करने से भ्रम नहीं होगा। क्या सिखाया जाना है? सुसमाचार मरकुस 15:16। मुक्ति के लिए परमेश्वर की शक्ति रोमियो 1:16। मृत्यु, दफनाना, पुनरुत्थान और मसीह का स्वर्गारोहण। शब्द अधिनियम 13:1-5। प्रेरितों का सिद्धांत अधिनियम। सब कुछ जो मैंने आज्ञा दी, मैट 28:19। किसे पढ़ाना है? प्रचारक 2 तीमुथियुस 4:05। चेले मरकुस 15:16। ईसाई विदेशों में बिखरे हुए अधिनियम 8:4। शिक्षण कैसे किया जाना चाहिए? किसी विशेष विधि को बाहर नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किसी विशिष्ट विधि की आवश्यकता है। भगवान का संदेश किसे सिखाया जाना चाहिए? सारी सृष्टि मरकुस 15:16। उनके सेवक कब पढ़ाने वाले हैं? अवसर उपलब्ध होते ही पढ़ाएं। मसीह में सुसमाचार लेने वाले कहाँ हैं? वे जहां भी गए। अधिनियम 8:04। किसी व्यक्ति की रुचि कहाँ और कब होती है? अधिनियम 13:07। जब एक साथ इकट्ठे होते हैं। अधिनियम 20:07। विदेशों में अधिनियम 13:2-3। सारी दुनिया मरकुस 16:15। एंटियोक के चर्च में भविष्यवक्ता और शिक्षक ग्रीक डिडास्कालोई थे, बरनबास, शिमोन जिसे नाइजर कहा जाता था, साइरेन के लुसियस, मानेन जो टेट्रार्क हेरोदेस के साथ लाया गया था, और शाउल। जब वे प्रभु की आराधना और उपवास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, बरनबास और शाउल को उस काम के लिए जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है मेरे लिए अलग कर दो। प्रेरितों 13:1-2। परंतु यदि तुम अपने आप को यहूदी कहते हो और व्यवस्था पर भरोसा रखते हो और परमेश्वर पर घमंड करते हो, 18, और उसकी इच्छा जानते हो और जो उत्तम है उसे स्वीकार करते हो क्योंकि तुम व्यवस्था से शिक्षा पाते हो, 19, और यदि तू निश्चय जानता है कि तू अंधों के लिए मार्गदर्शक और अंधियारों के लिए ज्योति है, 20, तू ही मूर्खों को सिखाने वाला और बालकों को सिखाने वाला और व्यवस्था में ज्ञान और सच्चाई का स्वरूप है, 21, तो तू ही तो फिर जो दूसरों को सिखाते हो, क्या तुम अपने आप को नहीं सिखाते? रोमियो 2:17-22। टिप्पणी, प्रशिक्षक ग्रीक शब्द पेड्यूटीन से आया है जिसका अर्थ है वह जो दूसरे को निर्देश देता है। टिप्पणी, शिक्षक ग्रीक शब्द डिडास्कालस, डिडास्कून या डिडास्किस से बना है जिसका अर्थ है निर्देश देने वाला। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुतों को शिक्षक होने का दंभ नहीं उठाना चाहिए क्योंकि तुम जानते हो कि हम जो पढ़ाते हैं उनका न्याय अधिक कठोरता से किया जाएगा। जेम्स 3:1-2। परंतु लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता भी थे, जैसे तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। वे गुप्त रूप से विनाशकारी पाखंडों का परिचय देंगे, यहां तक कि उस संप्रभु प्रभु को भी नकार देंगे जिसने उन्हें खरीदा है, स्वयं पर तेजी से विनाश लाएंगे। बहुत से लोग उनके घृणित मार्ग पर चलेंगे और सत्य का मार्ग बदनाम करेंगे। उनके लालच में ग्रीक क्लियोनेक्सिया, ये शिक्षक अपनी मनगढ़ंत कहानियों से आपका शोषण करेंगे। 2 पत्रस 2:1-3। टिप्पणी, झूठा शिक्षक ग्रीक छद्म डिडास्कलोई से लिया गया है जिसका छद्म अर्थ झूठा है और डिडास्कलोई का अर्थ या शिक्षक है। टिप्पणी, लालच आम तौर पर अधिक धन की अतृप्त इच्छा को संदर्भित करता है, लेकिन इसमें शक्ति या प्रतिष्ठा की अत्यधिक इच्छा भी शामिल हो सकती है। और चर्च में भगवान ने सबसे पहले प्रेरितों को, दूसरे भविष्यवक्ताओं को, तीसरे शिक्षकों को, फिर चमत्कार करने वालों को, उपचार के उपहार वाले, दूसरों की मदद करने में सक्षम, प्रशासन के उपहार वाले और विभिन्न प्रकार के बोलने वालों को नियुक्त किया है। जीभ क्या सभी प्रेरित हैं? क्या सभी पैगंबर हैं? क्या सभी शिक्षक हैं? क्या सभी के पास उपचार का उपहार है? क्या सभी अन्य भाषा में बात करते हैं? क्या सभी व्याख्या करते हैं? 1 कुरिन्थियों 12:28-30। वह मनुष्य मसीह यीशु, जिसने सब मनुष्यों की छुड़ौती के लिए अपने आप को दे दिया, यह गवाही उचित समय पर दी गई। और इस उद्देश्य के लिए मुझे एक अग्रदूत और एक प्रेरित नियुक्त किया गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और अन्य जातियों के लिए सच्चे विश्वास का शिक्षक नियुक्त किया गया। 1 तीमुथियुस 2:5-7। लेकिन यह अब हमारे उद्धारकर्ता ईसा मसीह के प्रकट होने के माध्यम से प्रकट हुआ है, जिन्होंने मृत्यु को नष्ट कर दिया है और सुसमाचार के माध्यम से जीवन और अमरता को प्रकाश में लाया है। और इस सुसमाचार का मैं प्रचारक, प्रेरित और शिक्षक नियुक्त किया गया। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही कष्ट भोग रहा हूँ, तो भी मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने किस पर विश्वास किया है, और मुझे विश्वास है कि जो कुछ मैंने उस दिन के लिए उसे सौंपा है, वह उसकी रक्षा करने में समर्थ है। 2 तीमुथियुस 1:10-12। टिप्पणी हेराल्ड या उपदेश ग्रीक शब्द की रक्स से है। और यहोवा के दास को झगड़ा न करना चाहिए, इसके बजाय उसे सभी के प्रति दयालु होना चाहिए, सिखाने में सक्षम होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। जो लोग उसका विरोध करते हैं उसे धीरे से निर्देश देना चाहिए, इस आशा में कि भगवान उन्हें सच्चाई का ज्ञान दिलाकर पश्चाताप प्रदान करेंगे और वे अपने होश में आ जाएंगे और शैतान के जाल से बच जाएंगे, जिसने उन्हें बंदी बना लिया है। उसकी इच्छा पूरी करो। 2 तीमुथियुस 2:24-26। डॉट ईसाइयों को किसी तरह से शिक्षण में शामिल होना चाहिए। इब्रानियों 5:11। चरवाहों, अभिभावकों या प्रहरी के लिए आवश्यकताओं में से एक ग्रीक शब्द एपिस्कोपीस से संचार में कुशल होना है, ताकि वे उन लोगों को प्रोत्साहित और डांट सकें जिन्हें भगवान ने उनकी देखभाल के लिए सौंपा है। चरवाहे जो अपने शिक्षण कार्य को एक वेतनभोगी पेशेवर को सौंपते हैं, वह बाइबल की अवधारणा प्रतीत नहीं होती है। इफिसियों 4:12 के अनुसार चरवाहों को मसीह के शरीर के निर्माण के लिए पवित्र लोगों को मंत्रालय डायकोनिया के काम के लिए तैयार करना है। कुछ नौकरों के कार्यों के उदाहरण। इसलिए प्रत्येक ईसाई एक सेवक है जो मसीह के शरीर को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य कर रहा है। इसलिए निम्नलिखित शास्त्र उनके कार्यों के कुछ उदाहरण प्रदान करते हैं। इसलिए इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों बनाया, अर्थात यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। यह सुनकर वे बहुत घबरा गए और पतरस और बाकी प्रेरितों से कहने लगे, भाइयों हम क्या करें? और पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का उपहार पाओगे, क्योंकि प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारी संतान के लिए और उन सबों के लिए है जो दूर दूर से हैं और जिनको हमारा परमेश्वर यहोवा अपने पास बुलाता है। कुटिल पीढ़ी। इसलिए जिन लोगों ने उसका वचन प्राप्त किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन लगभग 3,000 आत्माएं जुड़ गईं। विश्वासियों की संगति। और उन्होंने स्वयं को प्रेरितों की शिक्षा और संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थनाओं के लिए समर्पित कर दिया और सब प्राणियों पर भय छा गया और प्रेरितों के द्वारा बहुत से आश्चर्य कर्म और चिन्ह दिखाए गए और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे थे और सब एक समान थे। प्रेरितों 2:36-45। और उस दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सब यहूदिया और सामरिया के प्रदेशों में तितर बितर हो गए। भक्त लोगों ने स्तिफनुस को दफनाया और उसके लिए बड़ा विलाप किया, परंतु शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को खींचकर बंदीगृह में डाल देता था। अब जो तितर बितर हो गए थे वे वचन का प्रचार करते फिरे। प्रेरितों 8:1-4। जो लोग स्तिफनुस के विषय में उपद्रव के कारण तितर बितर हो गए थे, वे फीनीके, साइप्रस और अंताकिया तक यात्रा करते हुए केवल यहूदियों को संदेश सुनाते रहे। हालांकि उनमें से कुछ साइप्रस और कुरेनी के लोग अंताकिया गए और यूनानियों से भी बात करने लगे और उन्हें प्रभु यीशु के बारे में खुशखबरी सुनाई। प्रभु का हाथ उनके साथ था और बड़ी संख्या में लोगों ने विश्वास किया और प्रभु की ओर मुड़ गए। प्रेरितों 11:19-21। इन दिनों में भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंताकिया में आते थे और उनमें से अग्बुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा के द्वारा यह भविष्यद्वाणी की कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। यह क्लौदियुस के दिनों में हुआ। इसलिए चेलों ने निश्चय किया कि हर एक अपनी सामर्थ्य के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों के लिए सहायता भेजे, और उन्होंने वैसा ही किया और उसे बरनबास और शाऊल के हाथ पुर्नियों के पास भेज दिया। प्रेरितों 11:27-30। सप्त के दिन हम शहर के फाटक के बाहर नदी की ओर गए, जहां हमें प्रार्थना के लिए जगह मिलने की उम्मीद थी। हम बैठ गए और वहां इकट्ठी हुई महिलाओं से बात करने लगे। सुनने वालों में से एक थुआतीरा शहर की बैंगनी कपड़े का व्यापारी लिडिया नाम की एक महिला थी, जो भगवान की उपासक थी। प्रभु ने पॉल के संदेश का उत्तर देने के लिए उसका हृदय खोल दिया। जब उसने और उसके घर के सदस्यों ने बपतिस्मा लिया, तो उसने हमें अपने घर बुलाया। यदि आप मुझे प्रभु में विश्वास करने वाली मानते हैं, उसने कहा, आओ और मेरे घर पर रहो, और उसने हमें मना लिया। वह हेरोदेस पीटर को भी गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ा। यह अखमीरी रोटी के दिनों के दौरान था। 4 और उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया और उसकी रक्षा के लिथे 4 सिपाहियों को सौंप दिया और इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने बाहर ले जाएं। 5 इसलिए पतरस को बंदीगृह में रखा गया, परंतु कलीसिया की ओर से उसके लिए परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना की गई। वह पीटर जॉन की मां मरियम के घर गया, जिसका दूसरा नाम मार्क था, जहां बहुत से लोग इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों 12:3-6, 13-15। उसके पौलुस के साथ बेरिया से पिर्रहस का पुत्र सोपत्रस, थिस्सलुनीके से अरिस्तर्खुस और सिकुंडस, दिर्बे से गयुस, तीमुथियुस और एशिया प्रांत से तुखिकुस और ट्रोफिमुस भी थे। 5 ये पुरुष आगे बढ़कर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे। 6 परंतु अखमीरी रोटी के पर्व के बाद हम फिलिप्पी से जहाज खोलकर चले और 5 दिन के बाद त्रोआस में औरों के साथ मिल गए और वहां 7 दिन तक ठहरे। 7 सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। पॉल ने लोगों से बात की और क्योंकि वह अगले दिन जाने का इरादा रखता था, आधी रात तक बात करता रहा। प्रेरितों 20:4-8। 3 महीने के बाद हम एक जहाज में रवाना हुए जो द्वीप में सर्दियों के लिए गया था, अलेक्जेंड्रिया का एक जहाज जिसमें जुड़वा देवताओं को एक आकृति के रूप में रखा गया था। सिराक्यूज में रुककर हम 3 दिन तक वहां रहे और वहां से हमने एक सर्किट बनाया और रेगियम पहुंचे। और 1 दिन के बाद दक्षिणी हवा चली और दूसरे दिन हम पुतेओली में पहुंचे। वहां हमें भाई मिले और हमें 7 दिन तक उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया गया, और इसलिए हम रोम आए। और वहां के भाइयों ने जब हमारा समाचार सुना तो वे अपियुस और 3 सराय के मंच तक हमसे मिलने को आए। उन्हें देखकर पॉल ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और हिम्मत जुटाई। प्रेरितों 28:11-16। सभी ईसाइयों को चेतावनी। पीटर ने सभी ईसाइयों को चेतावनी जारी की। लोगों के बीच झूठे भविष्यवक्ता भी थे, जैसे आपके बीच झूठे शिक्षक होंगे। वे गुप्त रूप से विनाशकारी पाखंडों का परिचय देंगे, यहां तक कि उन्हें खरीदने वाले संप्रभु प्रभु को भी नकार देंगे, खुद पर तेजी से विनाश लाएंगे। कई लोग वे अपने शर्मनाक तरीकों का अनुसरण करेंगे और सच्चाई के मार्ग को बदनाम करेंगे। अपने लालच में पैसे, शक्ति, नियंत्रण या प्रतिष्ठा के लिए ये शिक्षक अपनी मनगढ़ंत कहानियों से आपका शोषण करेंगे। 2 पत्रस 2:1-3। टिप्पणी: झूठी शिक्षा की रोकथाम मसीह और प्रेरितों की शिक्षाओं के बेहतर ज्ञान और समझ से प्राप्त की जा सकती है। झूठी शिक्षा की एक और संभावना ऐसे उपदेशक से आ सकती है जिसकी व्यक्तिगत राय और व्याख्याएं अज्ञात हैं, क्योंकि उन्हें काम पर रखने से पहले पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है। एक किराए पर लेने वाला भेड़ के भेष में एक भेड़िया, 2 तीमुथियुस 4:3-5 देखें। प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में प्रेरित यूहन्ना के माध्यम से पवित्र आत्मा ने एशिया के 6 चर्चों में ईसाइयों को पश्चाताप करने, अपने तरीके बदलने की चेतावनी दी, क्योंकि वे गिर गए थे या धीरे धीरे मसीह से दूर हो रहे थे।